आज हम जापान में सैनिकवाद पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री केई हारा का शासनकाल राजनीतिक दलों द्वारा शासन का प्रयास था। केई हारा सामान्य सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधि था। उसकी नियुक्ति बहुमत दल के नेता होने के कारण हुई थी। अतः हारा के शासनकाल में उदारवादी प्रवृत्तियों ने सर उठाया। उसने आंतरिक सुधार एवं बाह्य शांति की नीति का समर्थन किया, परंतु नवंबर 1921 में उनकी हत्या ने जनतांत्रिक शासन के विकास के जड़ पर प्रहार किया। उसकी मौत के पश्चात सियुकाई दल में दो भाग हो गए। एक दल अलग होकर सियु होतो कहलाने लगा। हारा की मौत के पश्चात 1921 से 1924 ईस्वी तक चार मंत्रिमंडल कायम हुए। हारा के बाद क्रमशः कोरिकियो ताकासाही, तोमोसाबुरो कैटो, काउंट यामोतो तथा विस्काउंट कियुरा ने अपने मंत्रिमंडल कायम किए। ये मंत्रिमंडल राजनीतिक दलों से संबंधित नहीं थे तथा इनका उत्थान एवं पतन शीघ्रता से हुआ। इसके शासनकाल में जापान की आंतरिक समस्याएं अत्यंत ही जटिल हो गई। युद्धकालीन उत्कर्ष के स्थान पर अब आर्थिक मंदी आ गई थी तथा साइबेरिया से जापानी सेना 1922 ईस्वी के अंत तक लौटा ली गई थी। अतः आर्थिक बेकारी बढ़ रही थी और श्रमिकों में भयानक असंतोष था। अतः इसी काल में साम्यवादी दल एवं अन्य समाजवादी संस्थाओं का जन्म हुआ। श्रमिक संगठनों एवं किसान संघों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तथा उदारवादी भावनाएं काफ़ी बलवती हो गई। परंतु इसके दमन के हेतु कई गुप्त संगठन का भी उदय हुआ। संगठनों में काला अजगर समाज, शूनित शपथ संस्था, ब्लड ओथ एसोसिएशन काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनका कार्य उदारवादी संस्थाओं, लेखकों तथा संगठनों पर आक्रमण करना था। जापानी साम्यवादी दल का तथा अन्य समाजवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी समय सितंबर 1, 1923 ईस्वी में टोक्यो में एक भयानक भूकंप आया, जिससे अपार धन और जन की हानि हुई। इस प्रकार इस काल के मंत्रिमंडल आंतरिक प्रश्नों में ही उलझे रहे। कियुरा का मंत्रिमंडल कुलीनों का प्रतिनिधित्व करता था, अतः सभी दलों ने मिलकर इसका विरोध किया। फलस्वरूप 1924 ईस्वी में इसका पतन हो गया और अब बहुमत दल केन्सिकाई के नेता ताकाकिरा कैतो ने अपना मंत्रिमंडल संगठित किया। ताकाकिरा कैतो 1924 से 1925। कैतो मंत्रिमंडल की स्थापना के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा शासन का पुनः प्रतिष्ठापन हुआ। अब तक जेनरो के दो प्रमुख सदस्य यामागाता 1923 तथा सत्सुकाता 1924 की मौत हो चुकी थी। कैतो के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री सिदेहारा तथा वित्त मंत्री हामागुची भी उदारवादी थे। मंत्रिमंडल पर मित्सुबिशी परिवार का प्रभाव था तथा वे व्यापार का शांतिपूर्ण विकास चाहते थे। अतः इस मंत्रिमंडल ने आंतरिक तथा बाह्य प्रश्नों पर उदारवादी नीति अपनाई। इसने मार्च 29, 1925 ईस्वी को सर्वमताधिकार नियम पास किया। सेना की संख्या घटा दी गई। आंतरिक अशांति एवं असंतोष को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार किए गए, किंतु साम्यवादी एवं समाजवादी संघों के दमन के लिए अप्रैल 1925 ईस्वी में शांति नियोजन कानून, जिसे हम पीस प्रिजर्वेशन लॉ कहते हैं, पास किया गया। इसके अनुसार शासन तंत्र के परिवर्तन अथवा निजी संपत्ति के अंत के लिए चेष्टा करना आवश्यक घोषित कर दिया गया। इसी काल में रूस के साथ संधि भी की गई, चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की चेष्टा भी की गई। रेजिरो वाकात्सुकी दिसंबर 1925 से अप्रैल 1927, दिसंबर 1925 ईस्वी में कैतो की मौत हो गई, अतः केसिकाई दल का अध्यक्ष पद एवं प्रधानमंत्री पद रेजिरो वाकात्सुकी ने संभाला। 1926 ईस्वी में सम्राट योशो हितो की मौत हो गई तथा उसके उत्तराधिकारी सम्राट हिरोहितो का शासन आरंभ हुआ। उसने अपने शासन काल की उपाधि सोवा अर्थात जागृत शांति रखी। वाकात्सुकी में कैतो की दृढ़ता एवं योग्यता नहीं थी, यह उदारवादियों एवं अनुदारवादियों दोनों का कुभाजन बना। इसका परिणाम यह हुआ, अप्रैल 1927 ईस्वी में शिउकाई दल के अध्यक्ष बैरन गीची तनाका ने अपना मंत्रिमंडल संगठित किया। शिउकाई शासन 1927 से 1929। तनाका चोशू संप्रदाय का सदस्य था, उसके दल को मित्सुकाई परिवार का समर्थन प्राप्त था। केन्सिकाई मंत्रिमंडल अपनी कमजोरी के कारण बदनाम हो गया था। सभी अनुदारवादी एवं सैनिकवादी उसकी नीति के विरोध में थे, अतः तनाका ने चीन के प्रति जबरदस्ती की नीति का अवलंबन किया। चीन में किमिंगतांग फौजों के प्रयास से देशीय एकता संपन्न हो रही थी, इससे जापान के मंचूरियाई अधिकारों को खतरा था। अतः मंचूरिया में बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकने के लिए तनाका ने मई 1927 ईस्वी में तथा पुनः मई 1928 ईस्वी में शांतुंग की राजधानी सिनान में अपनी फौज भेज दी। दोनों बार इनकी टक्कर राष्ट्रवादी फौजों से हुई, परंतु चीनी राष्ट्रवादियों का प्रसार नहीं रुक सका। अंत में तनाका को अपने ही समर्थक चांग सोलिन को मार्ग से हटाना पड़ा, परंतु उनके आदेश के बावजूद मंचूरिया के नए शासक चांग सिहुल्यांग ने नानकिंग की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार चीन में जो नीति तनाका ने अपनाई उसमें उसे सफलता नहीं मिली। अब उसने साम्राज्यवाद का कार्यक्रम, जिसे तनाका प्रोग्राम भी कहते हैं, निर्धारित कर जापान में सैनिकवाद को प्रश्रय दिया। दूसरी ओर उसने पेरिस की संधि की शर्तों को स्वीकार कर युद्ध नीति का परित्याग करना भी स्वीकृत किया। तनाका की गृह नीति भी इसी प्रकार ढुलमुल रही। परिणाम यह हुआ, शीघ्र ही इसके मंत्रिमंडल का प्रबल विरोध हुआ। 1927 ईस्वी में योकोहामा गुची ने केन्सिकाई दल को सियो होंतो से मिलकर पुनः संगठित किया तथा इसका नाम मिनसेतो रखा। शीघ्र ही इस दल ने तनाका की नीतियों की जबरदस्त आलोचना शुरू की। तनाका को चीन से फौज वापस बुला लेनी पड़ी। उसकी नीति असफल रही तथा प्रबल विरोध के कारण जुलाई 1929 ईस्वी को उसने अपना त्याग पत्र दे दिया। मिनसेतो शासन योकोहामागुची जुलाई 1929 नवंबर 1930। योकोहामागुची का मंत्रिमंडल उदारवादियों का मंत्रिमंडल था तथा इसने कैतो की परंपरा का अवलंबन किया। इसने आंतरिक सुधार, मितव्ययता एवं राजनीतिक उदारता की नीति अपनाई तथा प्रशासनिक पुनः संगठन किया। वैदेशिक क्षेत्र में सिदेहारा ने शांतिपूर्ण नीति को प्रश्रय दिया तथा लंदन के नाविक समझौते को स्वीकृत किया, परंतु अब तक जापान का नया सैनिकवादी नेतृत्व जागृत हो चुका था। देश में साम्राज्यवादी नीति की समर्थक समाज तथा संस्थाएं कायम हो चुकी थी। सेना में भी अराकी मजाक की आदि नए नेताओं का उदय हो रहा था। 1929 ईस्वी में मंचूरिया संघर्ष में रूस की विजय ने सैनिकवादियों को नया मार्ग दर्शाया। विश्वव्यापी मंदी के कारण देश में बेरोजगारी अलग फैल रही थी, अतः सैनिकवादी देशभक्तों के पास इन सभी समस्याओं का समाधान था, साम्राज्य का प्रसार। इस दिशा में उदार हामागुची को भी नवंबर 14, 1930 ईस्वी को गोली मार दी गई। हामागुची अप्रैल 1931 तक जीवित रहा, परंतु शासन का भार सीधे हारा ने संभाला। हामागुची की मौत ने जापान के सर्वाधिक उदार नेता को रास्ते से हटा दिया। इसके साथ ही जनतंत्र के विकास की आशा भी खत्म हो गई। सिदेहारा के बाद अप्रैल 1931 ईस्वी में पुनः मिसेतो दल के अध्यक्ष वाकात्सुकी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, परंतु अब सैनिकवादियों की बन आई थी तथा वाकात्सुकी उन्हें रोकने में असमर्थ था। ऐसी अवस्था में 18 सितंबर 1931 ईस्वी को जापानी सेना ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और नए जापानी साम्राज्यवाद का श्री गणेश किया। दिसंबर 10, 1931 ईस्वी को वाकात्सुकी ने त्यागपत्र दे दिया और इसके साथ ही जापान सैनिकवाद तथा साम्राज्यवाद के जाल में झूलने लगा। जापान की आंतरिक अव्यवस्था ने वहां के सैनिकवादियों को वह सुनहरा मौका दिया जिससे वह आंतरिक समस्याओं को उभार कर जनता को भ्रमित कर अपने सैनिकवाद को बढ़ाने लगे और सैनिकवाद जापान में चरम पर पहुंचकर जापान के पुनः साम्राज्यवाद विस्तार का आधार बना।